اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دور قرآن 2023، ڈی کیو 2023. آج ہم اس میں سے کنٹینیو کریں گے پارا نمبر 22 کو، ومن یقنت، اور پیچھے والی صورت ہم نے کر لی الحمدللہ. اب ہم چلیں گے صورت سبا پہ، اور اتنی خوبصورت سی یہ صورت ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نا، تو ایک عجیب سا نقشہ ذہن میں آتا ہے. اور مجھے تو اس کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے وہ جو بچپن کی کہانیاں تھیں نا، ایک تھا بادشاہ، ایک تھی ملکہ، اور کچھ اس قسم کی باتیں جو وہ ذہنوں میں آنے لگتی ہیں. لیکن حقیقت میں یہ قوم تھی جس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے ان کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دی تھیں، لیکن ایڈونچرس تھے. اللہ ہمارے فاصلوں کو بڑھا دے، اللہ یہ کر، اور یہ کیا ہے، بہت ہی گند پڑ جاتا ہے، اتنا پھل ہے، ہر وقت نیچے زمین پہ گرا رہتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ نا شکر ہے لوگوں، ڈھونڈو گے تو ملے گا. پھر اب سجدوں میں جا کر اس نعمت کو لینا ایسے تمہیں نہیں ملے گی. حقیقت یہ کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. شاید کسی نے کسی محبوب کے لیے کہا ہو، لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جملہ نعمتوں کے لیے ہے. ہم نعمتوں کی اس وقت قدر کیا کرنی، ہم تو اس کو کبھی کبھی بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. اور انگلش میں بول دوں کہ اپرچونیٹیز کو ہم جب لائبلٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں تو زوال نعمت شروع ہو جاتا ہے. علامہ صبح کا من زوال نعمت کا و تحب العافیتی کا و جمی سختی کا، یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. تو سورہ سبا جو ہے ترتیب میں 34 نمبر کی سورہ ہے، اور 54 آیات ہے اس کی. اس کے اندر چند چیزیں نوٹ کریں، کیونکہ اب ہم صورتوں کے وائز چل رہے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو صورتوں کے شروع میں چیزیں دینے لگ گئی ہوں تاکہ آپ کم از کم ہر صورت کا ایک جز تو لے کر اٹھیں. تو اس کے اندر ٹوٹل 7 ڈفرینٹ کہہ لیجئے کہ موضوع ہیں. آیت 1-9 تک صفات الہی ہیں، توحید صفات اور عقید آخرت پر اعتراض. یعنی وہی مکی صورتوں کا انداز کہ جب وہ اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے تھے، تو اس میں پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کر لو، اللہ کو تمہاری ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. پھر آئے 10-14 میں شکر داؤد اور شکر سلیمان کے دو اللہ کے بندے، اس بات کی دلیل ہیں کہ آج بھی پیسے والوں کے پاس دین ہو سکتا ہے اور دین والوں کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو مس یوز نہ کریں. پھر اس کے بعد آگے اگلا ٹاپک جو ہے وہ 15-21 ہے، قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت. یعنی یہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. کسی بھی انسان کا یا مل کا یا فیکٹری کا یا ادارے کا ڈاؤن فال جہاں بھی شروع ہوگا، آپ دیکھیے گا اس کی تہہ میں کہیں نہ کہیں ناشکری ہوگی. عورتیں اپنے گھر پر بات کر لیتی ہیں، مجھے ملا ہی کیا ہے، تمہارے گھر تو میں نے کبھی چین نہیں پایا. بس وہ تقدیر کا قلم ہل جاتا ہے اس وقت کہ اس کو فارغ کرو. کوئی مرد اپنی اچھی بیوی کی قدر نہیں کرتا نا، تو اللہ کو اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ اس بیوی کو مجھ سے دور کر دو. تو نہ شکریوں سے بچنا ہے. پورے بارے میں ہم انشاءاللہ یہ آگے پڑھنے والے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے 22-28، توحید کو ثابت کرنے کے دلائل اور شرک کا رد ہے، اور نفس سلم کی رسالت کی دلیل موجود ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ 29-42، انکار آخرت اور شرک کا رد. اور آیت 43-46 میں رسول پر اعتراض. اور آخر میں 47-54 میں دوبارہ نفس سلم کی رسالت کے دلائل بھی ہیں، اور آخرت کا یعنی قیامت کا خوف بھی دلایا جا رہا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. نوٹ کیا آپ نے؟ الحمد سے شروع ہو رہی. پیغام یاد ہے آپ کو؟ ہر 7.5 کے بعد قرآن پاک میں یہ انداز ہے. تو اس کا مطلب کہ اب بس 1/4 رہ گیا. الحمدللہ 3/4 آف قرآن ہم کر چکے. تعریفوں کے ساتھ شروع ہونے والی صورت. پہلی 9 آیات 1-9، رکوع نمبر 7 ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लायक हैं जिसकी मलकियत में वो सब कुछ है जो आसमानों और ज़मीन में है, और आखरत में भी तारीफ़ उसी के लिए है। वो बड़ी हिकमतों वाला और पूरा खबरदार है, जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले, जो आसमान से उतरे और जो चढ़कर इसमें जाए, वो सबसे बाखबर है और मेहरबान नहायत बख्शिश वाला है। यानी आप देखिए, अपने रब की तारीफ़ें सुनते वक्त दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। लेकिन जिनको नहीं समझना वो नहीं समझते। कैसे? कुफ्फार कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए, मुझे मेरे रब की कसम, जो आलिमुल गैब है, वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह ताला से एक ज़र्रे के बराबर की चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद है। क़यामत क्यों आएगी, इसका जोड़ जोड़िए इसे, ताकि वो ईमान वालों और नेकुकारों को भला बदला अता फरमाए। यही लोग हैं जिनके लिए मगफरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। और हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने कोशिश की, वो ये वो लोग हैं जिनके लिए अलमनाक सज़ाओं का अज़ाब है, और जिन्हें इल्म है कि वो देख लेंगे जो आपकी जानेब आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है वो सरासर हक है, और अल्लाह गालिब खूबियों वाले की राहबरी करता है। और कुफार ने कहा, आओ हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बताएं। अब ज़रा टोन देखिएगा, नबी के बारे में क्या कहने लगे हैं। क्या हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बतलाएं जो तुम्हें ये खबर पहुंचा रहा है कि जब तुम बिल्कुल ही रेजा रेजा हो जाओगे तो फिर एक नई पैदाइश में आओगे। यानी डाउट क्रिएट कर रहे हैं, नबी की दावत को मशकूक बना रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि खुद इसने ही अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या इसे दीवानगी है। यानी समझ नहीं आता इस शख्स के साथ मामला क्या है। कई दफ़ा लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या हो गया, मेरे साथ पता नहीं क्या मामला है, मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी है, पेट में दर्द होता है ना, कोई कहता है मुझे लगता है अल्सर है, कोई कहता है नहीं ये तो किडनी पेन है, कोई कहेगा नहीं ये तो स्प्लीन का पेन है। तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि इस नबी को, इस शख्स को मसला क्या है। ना हमसे कुछ मांगता है, ना इसको हमसे कुछ लेना है, ना इसका कोई हमारे साथ ताल्लुक, रिश्तेदारी, ना कोई ऐसा नाता। ये क्यों हमें दिन रात आकर तंग करता है? उनके गुमान में तो तंगी थी ना, तो उस पर क्यास करते हैं, सोच रहे अपने। यहाँ से पता चलता है कि उनका माइंड डिस्टॉर्टेड था। और आज भी जब तक आप यक रुखे होकर किताब से नहीं जुड़ते आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। आजमा के देख लें। जैसे शादी से पहले उलझाव शुरू हो जाता है ना, कहाँ होगी शादी, कब होगी, रिश्ता क्यों नहीं आ रहा, माँ बाप भी परेशान, ऊपर वाले, खुद लड़कियाँ भी ऐसी हो जाती हैं कभी, शादी के बाद पाँव लग गए, यही था यहाँ होना है, चलो ठीक है यहीं सेट करते हैं अपने आप को। बंदे की ज़िंदगी में एक ठहराव आता है ना, मुझे ऐसे लगता है कुरान हाथ में थाम कर एक स्टूडेंट बनने के बाद ज़िंदगी मुतमईन। अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी में ठहराव उस दिन आ गया था जिस दिन मैंने कुरान पकड़ लिया, कि मैंने अब रास्ता पकड़ लिया, अब ये इसको नहीं छोड़ना और अल्लाह मरते दम तक ना छुड़ाए। इसके बगैर तो बाकी सिर्फ हवा है और बस ख्वाहिशात हैं। फिर इसके बाद क्या कहते थे कि ये क्या कहता है, पता नहीं, समझ नहीं आता। क्या बस वो अपने आगे पीछे आसमानों ज़मीन को नहीं देख रहे? यदि उनको इतना एतराज़ है इस पे और अल्लाह पे और आखरत पे, तो कायनात पे गौर करके देख लें। अगर हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें या इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। यकीनन इसमें पूरी दलील है, और उस बंदे के लिए जो दिल से मुतवज्जे हो। ये नोट करें, जब तक 100% दिल को हाजिर नहीं करेंगे बात समझ नहीं आएगी। कोई भी नहीं समझ आती, ना इंसानों की ना रब की। लोग बात कर रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ खोए में, बंद में कहते क्या कहा आपने, अच्छा आपने मुझे कब कहा था, वो मैं तो फ़ोन पे था, आपने मुझे तो कहा ही नहीं। घरों में ये बातें चलती हैं ना। तो दिल पूरा अंदर दाखिल करना है, और पूरे कुरान पाक की 3 आयतें जहाँ क़यामत के आने पर कसम खाकर बयान किया गया, सूरत यूनुस की आयत 53, दूसरी ये आयत जो भी पढ़ी और सबा की 3, और तीसरी आयत तगाबुन 64 नंबर सूरा और इसकी 7 आयत है। क्या पता चला कि अल्लाह को तो यकीन है, अल्लाह हमें यकीन दिलाता है कसमें खा खा कर कि कसम की बात पे यकीन करते हो तो सुन लो, क़यामत आके रहेगी। हमने क्या सीखा इन आयात से? नेक अमल करना है, अल्लाह ताला की आयात को नीचा नहीं दिखाना या उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, कुफर नहीं करना, आखरत पर यकीन रखना है, अल्लाह ताला की तरफ रजू करना है, और अल्लाह ताला की सिफात पर गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 10 से 21, रुकू नंबर 8, अल्लाह ताला ना शुक्री करने वालों को बदल देते हैं। यदि तुम रूठे हम झूठे, आराम से बैठ जाओ, शुक्र करो कि तुम्हें हमने बर्दाश्त किया हुआ है। हम अपने करतूत देखें और अल्लाह ताला का मरसत मामला देखे तो यही जुमले उस पर फिट होते हैं। वलकद आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना फ़ज़ल किया। ए पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है, और हमने इसके लिए लोहा नरम कर दिया कि तू पूरी पूरी ज़रहें बना और जोड़ों में अंदाजन रख, यानी उनको जोड़ सही कर। इससे पता चलता है कि कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए, ये नहीं कि छोटी बड़ी को बड़ा, लिखें तो नीट लिखिए, घर का काम करें तो सफाई से करें, ये नहीं कि आपकी सफाई की हुई के ऊपर दोबारा सफाई करनी पड़े, और जिस कपड़े से सफाई करो उसको भी धो लिया करो। हमारा हाल यह है कि जिस कपड़े से सफाई की जाती है उसमें से बाज़ दफ़ा स्मेल आ रही होती है। तो ये एक अंदाज़ा साइड का नुक्ता था जो आपको दे दिया। तुम सब नेक काम करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख़्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल इसकी महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी, और हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, और इसके रब के हुक्म से बाज़ जिन्नात इसकी मातहती में इसके सामने काम करते थे, और इनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करे हम इसे भड़कती हुई आग के अजाब का मज़ा चखाएंगे। जो कुछ सुलेमान चाहते थे वो जिन्नात तैयार कर देते थे। है आज किसी की इतनी ताकत? हमें मासियाँ नहीं मिलती, नौकर नहीं मिलते, जिन्नात होते तो एक जिन हायर कर लेते और फिर वो रहते और हम भाग जाते। तो हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने जिन्नात पे हुकूमत दी थी। क्या करवाते थे उनसे? मसलन कले और मुजस्मे और हौज़ों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगें। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिया में नेक अमल करो। नोट करें, जहाँ कोई नेमत मिले, यूजल और अनयूजल, उतना शुक्र बढ़ाएं। तो बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल दौरतुल कुरान। और यहाँ आकर बैठने की नेमत पे, और अल्लाह हमारे लिए इस मामले को आसान कर दे। हमने शुक्र किया, शुक्र से नेमत बढ़ती जाती है। मेरे बंदों में से शुक्र गुजार बंदे कम ही होते हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें थोड़ों में कर ले, चुन ले, सिलेक्टेड वन कर दे, हमें चोजन वन कर दे, क्योंकि हमेशा सिलेक्टेड थोड़े ही होते हैं। फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो इनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घुन के कीड़े ने। ये घुन के दीमक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टर्माइट। ये थी दीमक का कीड़ा, इतना मामूली कीड़ा, और आप देखिए इतना बड़ा राज खोल गया, हजरत सुलेमान के असा को खा गया। खैर, फिर क्या हुआ? वो इनके असा को खा रहा था, बस जब सुलेमान गिर पड़े, इस वक्त जिन्हों ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना रहते। कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी थी। इनके दाएं बाएं दो बाग थे। अब स्टोरी सुनिए ज़रा कौम सबा की। हमने इनको हुक्म दिया कि अपने रब की दी हुई रोज़ी खाओ और इसका शुक्र अदा करो, उम्दा शहर और बख्शने वाला रब। लेकिन उन्होंने रूगरदानी की तो हमने इन पर ज़ोर के सैलाब का पानी भेज दिया, और हमने इनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बद मज़ा मेवों वाले और बकसरत छाव और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। हमने इनकी नाशुक्री का बदला इन्हें दिया। हम ऐसी सख्त सज़ा बड़े नाशुक्रों को ही देते हैं। नोट करें अब शुक्र और नाशुक्री का लफ्ज़। और हमने इनके और इनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दे रखी थी चंद बस्तियाँ और आबाद कर रखी थी जो बरसरे ज़ाहरी राह पर थी, यानी शारे फैसल, यानी मेन रोड पे थी, और इनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर कर दी। इनमें रातों और दिनों को बामनो अमान चलते फिरते रहो। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हमारे रब हमारे सफ़र दूर दराज कर दे। वी लाइक लॉन्ग ड्राइव। आज भी लोग कहते हैं तकरीब क्या जाना है, दूर चलते हैं, और दीन का काम हो तो कहते हैं इतनी दूर, और दीन की बात होते कहते ना ना ना, इतनी दूर से आना ये बहुत मुश्किल है, इट्स सो हार्ड। तो उन्होंने भी जस्ट फॉर एडवेंचर, फॉर फन, दूर के सफ़र मांगे। फिर क्या हुआ? चूँकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया। इसको लिखिए, पीछे पीछे पहले पारे में आया था, तस्तब्दिलू नल्लज़ी अतना बिल्लज़ी हुआ खैर। मनो सलवा का इनकार करके उन्होंने अल्लाह के बदले अदना मांग लिया। यहाँ अल्लाह क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इसलिए हमने इन्हें गुज़श्ता अफसानों की सूरत में कर दिया, यानी भूली बिसरी कहानियाँ, और इनके टुकड़े उड़ा दिए। बिलाशुबा हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं, और शैतान ने इनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया। ये लोग सब के सब इसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात के। शैतान का इन पर कोई जोर न था, मगर इसलिए कि हम इन लोगों को जो आखरत पर ईमान रखते हैं मालूम कर लें। इन लोगों में से जो इसमें शक में हैं और आपका रब हर चीज़ पर निगेबान है। तो ये थी शुक्र और नाशुक्री की कहानियाँ। रिवायत सुन लीजिए, अदबुल मुफरत की रिवायत है 1087 आयत नंबर 10 के बारे में। हज़रत बुरैदा से रिवायत है, अल्लाह के नबी मस्जिद की तरफ गए तो हज़रत अबू मूसा शरी तिलावत कर रहे थे। आपने कहा, मुझे देख कर फरमाया, तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया, मैं बुरैदा हूँ, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। आपने फरमाया, इस शख्स, यानी इशारा किया अबू मूसा शरी की तरफ, कि इनको यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम वाली खुश एलहानी मिली है, यानी इनकी आवाज़ दाऊद से मिलती है। अल्लाह ने इनकी ज़ुबान में ये खूबी रखी थी। तो अबू मूसा अलअशरी का भी नाम डाल लीजिए आज के पारे की लिस्ट में, अबू मूसा अलअशरी। अब देखिए कि किसी की बस कोई एक खूबी होती है और उसके लिए चुना जाता है, और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने काम का बनाना होता है ना, कोई बहुत बड़ी खूबियों का वो मुरक्का नहीं होते। बस लोग कहते हैं, मेरे अंदर तो कोई खूबी नहीं, मुझे तो आता ही कुछ नहीं। भाई करीब से ढूंढ कर देखिए, आपको कुछ तो आता है, और अगर आपको कुछ तो आता है ना, तो उसी को अपनी वजह बख्शिश, वजह निजात बना दें। ये मैं आपको छोटी सी नसीहत कर रही हूँ। अब ज़िंदगी इतनी हमारी मुख्तसर हैं, हमें नहीं पता कितना वक्त है। देर इज़ नो टाइम, देर इज़ नो नीड, देर इज़ नो रूम फॉर ट्रायल एरर। हम अब तजर्बे नहीं कर सकते। अब तक तो आपको अपनी ज़िंदगी का, अपने अंदर का टैलेंट पता चल गया होगा ना। देखिए ना, 30 ईयर को हम एवरेज बना लेते हैं, हम सब 30s में हैं, इमेजिन कीजिए। क्या मुझे अपनी खूबियों का नहीं पता चला अभी तक? चलें, कोई नहीं बताता, कुरान पढ़ें, आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। फ़ी ही ज़िक्रुकुम, क्या आपको अपनी खामियों का नहीं पता? तो अपने भाई बहनों से पूछ लें, रिश्तेदारों से पूछ लें, गिन गिन के बताएंगे, और अपने ससुराल वालों से जाके पूछ लीजिए। कुरान जितने प्यारे तरीके से आपको, मुझे, हमारी खूबियाँ, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी चीज़ें बताता है, इतने प्यार से कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आपको अपना टैलेंट मिल गया, बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे इसमें खपा दे। देखिए, अल्लाह के नबी के हाथ लगे, लेकिन उमर कभी भी अबू बकर नहीं बन सके, अली उमर नहीं बन सके, उस्मान वो नहीं बन सके, जो जो था बस उसी में अपना नाम लेके चला गया। ये करना है आपने, मैंने। शैतान जब हमें धोखे में डालता है ना, कहता है कभी तो जिसको भी देखेंगे ना कोई काम करता, हम कहते हैं मुझे भी ये काम करना है, और उस वक्त हमें क्या लग रहा होता है, सबसे बड़ी नेकी ये है क्या कि जो ये कर रहा है, ये है वो है, गलत है। कल आपसे मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो हमें आता ही नहीं करना। तो जब आता ना हो तो फिर वही बात है कि कौवा चला हंसकी चाल के अपनी भी भूल गया। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने ऊपर इन चीज़ों को लेकर फील किया करें, ना कि दूसरों के ऊपर, और अपनी खूबियों को पहचानें। तो अबू मूसा अलअशरी की बात पे इतनी लंबी बात हमने जो की, इसका खुलासा क्या निकला कि उनकी खूबी थी, अल्लाह ने उनका नाम दिलवा दिया। आपकी भी मेरी कोई खूबी सिर्फ हमारी बचत की और हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, और हमें क्या चाहिए? क्या सीखा? अच्छे अमल करने हैं, अपनी खूबी को पहचानना है, अपनी कभी बेइज्जती नहीं करनी कि मुझे कुछ नहीं आता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी हर्ट ना होने दें। देखिए, हम्बल होना और बात है और ह्यूमिलिएट होना और बात है। दूसरे आपकी बेइज्जती करते रहें, क्या बात है, नहीं करने दूंगी। डिस्टेंस प्लीज़, सोच के बात करें, मिजाज से असूलन नरम रहिए, बींग हम्बल रहिए। फिर अल्लाह के हुक्म से सरकशी नहीं करनी, शुक्रगुजारी के तौर पे अमल करना है, सब्र करना है, शैतान की पैरवी नहीं करनी, और आखिरत पे यकीन रखना है। आगे जी, रुकू नंबर 9:22 से 30, हक पर होना, जिसका टॉपिक है قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिनका तुम्हें गुमान है सबको पुकार लो, ना इनमें से किसी को आसमानों और ज़मीनों में से एक ज़र्रे का इख्तियार है, ना इनका इनमें कोई हिस्सा है, ना इनमें से कोई अल्लाह का मददगार है, दरख्वास्त शिफात भी उसके पास कुछ नफ़ा नहीं देती सिवाय इनके जिनके लिए इजाज़त हो जाए, यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं, तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया? जवाब देते हैं कि हक फरमाया, और वो बुलंद वाला और बहुत बड़ा है। पूछिए कि तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी कौन पहुँचाता है? खुद जवाब दीजिए कि अल्लाह। सुनो, हम या तुम या तो यकीनन खुली हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में हैं। कह दीजिए, हमारे किए हुए गुनाहों के बारे में तुमसे कोई सवाल न किया जाएगा, और न तुम्हारे अमाल की बात पुरस हमसे की जाएगी। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर हम में सच्चे फैसले कर देगा, वो फैसले चुकाने वाला और दाना है। कह दीजिए कि अच्छी, मुझे भी तो इन्हें दिखा दो, मतलब वो लोग दिखाओ, मुराद है जिन्हें तुम अल्लाह ताला का शरीक ठहरा कर इसके साथ मिला रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह है, ग़ालिब बाहिकमत। हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हाँ, मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है। इज़ इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू। पूछते हैं कि वो वादा है कब? सच्चे हो तो बता दो। जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुअय्यन है, जिससे एक साथ ना तुम आगे जा सकते हो ना पीछे हट सकते हो। क्या पता चला? हमने क्या सीखा? हक पे होना है, खुली गुमराही में नहीं होना, शिर्क की हकीकत को समझना है, खुशखबरियाँ देनी है, बुरे अंजाम से डराना है और फैसले के दिन पर यकीन रखना है। आगे जी रुकू नंबर 10, 31 से 36। वक़ाल लज़ीना कफ़रू लन नोमिन। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, यानी रिस्क के मामले को अल्लाह ताला पे डाल दीजिए। और कुफ्फार ने कहा, हम हरगिज़ ना तो इस कुरान को मानेंगे ना इससे पहले की किताबों को। ऐ देखने वाले, काश के तू इन जालिमों को इस वक्त देखता जबकि ये अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे। तसव्वुर में लाइए, फेल होने वाला स्टूडेंट किस किस को इल्ज़ाम दे रहा होता है। पेपर मुश्किल था, वो फेवरेटिज्म करते हैं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, उस दिन तो मुझे भी बुखार था। वहाँ भी खड़े हुए दूसरों को ढूंढ रहे होंगे कि जिनके कंधे पे बंदूक रख के चला दें। अपनी महरूमियों को दूसरों के नाम पे लाने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। क्या कहेंगे? कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, अगर तुम ना होते, जैसे गुस्से में कहते हैं ना, तुम ना होती तो फिर मैं ऐसी ना होती, मैं तुम्हारी वजह से बिगड़ी हूँ, आपने मेरा ये हाल किया है। हमें जब किसी पे गुस्सा आता है तो हम क्या बोलते हैं? आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आप भी नहीं कहते, तुम कहते हैं। वहाँ खड़े हुए कह रहे हैं, ये तुम ना होते तो हम बड़े मोमिन होते। ज़रा लिखिए, हम किस किस के बारे में ये सोचे बैठे हैं कि उनकी वजह से हम मोमिन नहीं हैं? ये बड़े लोग इन कमज़ोरों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। यानी इंसान की कमज़ोरी बता दी गई कि अपनी नाकामी और महरूमियाँ कबूल नहीं करता, और सहाबा किराम बिल्कुल इससे अपोजिट थे। क्या करते थे? हर चीज़ को अपने ऊपर लेते थे। यस, आई वॉज रॉन्ग, इट्स ओके, मूव हेड, आगे चलो। देखिए, इतना वक्त ही नहीं है कि अपनी सफाइयाँ पेश करें। आपने कह दिए ठीक है, मैं गलत हूँ, ठीक है, अच्छा मैं ऐसी, आप जो कहें, मेरे पास नहीं वक्त आपसे उलझने का। आप ऐसे बेनियाज बन के देखिए तो फिर आप देखिए अल्लाह आपसे काम कितने लेता है। इसके जवाब में ये कमज़ोर लोग इन मुतकबिरों से कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम्हारा दिन रात मकरो फरेब से हमें अल्लाह के साथ कुफर करने और इसके शरीक मुकर्रर करने का हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस हुआ। आज है हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जो दुनिया को बड़ा करके दिखाते हैं और गुनाहों को सवाब बनाकर दिखाते हैं, और अजाब को देखते ही सब के सब दिल में पशेमान हो रहे होंगे, और कुफार की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे। इन्हें सिर्फ इनके किए कराए अमाल का बदला दिया जाएगा। और हमने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गए हो हम इसके साथ कुफर करने वाले हैं। और कहा, हम माल और औलाद में बहुत बड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम अजाब दिए जाएं। कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और तंग भी कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप नोट करें, अक्सर लोग, अक्सर ना शुक्रे, अक्सर लाइल। आज दुनिया ऐसी नहीं है, अक्सरियत कहाँ मिलती है? अक्सर क्या कर रहे होते हैं? अक्सर को क्या पसंद होता है? जवाब आप सबको आता है। और ये आयत 35 के बारे में रिवायत सुन लीजिए, बुखारी में 7 नंबर की। हरकल ने कहा कि जब कि अबू सुफियान से उनकी जाहिलियत की हालत में अल्लाह के नबी के बारे में पूछा गया कि वो जो शख्स नबी कहता है खुद को, उसके पीछे कौन लोग आते हैं? कहा, शरीफ शर्फा, नोबल पीपल, आप जैसे, या फिर बड़े लोग, छोटे लोग, या कमज़ोर। तो अबू सुफियान ने बताया क्या कहा? कहने का, बड़े कमज़ोर, गरीब, बेचारे लोग आते हैं उधर। हरकल ने कहा, बस फिर ये सच्चा नबी है, क्योंकि हर रसूल या नबी अव्वल अव्वल, बाद में तो फिर अमीर गरीब सब आते हैं, लेकिन शुरू शुरू में ताबेदारी करने वाले ज़यीफ़ लोग होते हैं। और हम क्या कहते हैं? बड़े लोग, कितने लोग, कौन बड़ा? अल्लाह की सुन्नत है हक़ को कबूल करने वाले पहले छोटे लोग होते। वजह साफ जाहिर है, उनके बीच में रुकावटें नहीं होती, उनके पास है ही क्या जो छोड़े, उनके पास है ही क्या जिस पे तनकीद होगी। देखिए ना, एक माल्टों की रेड़ी लगाता है बंदा, 1000-1200 के उसके माल्टे हैं, उसको क्या लगे सूद की आयतों से, उसको क्या लगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की खराबियों कमियों से। ज़्यादा से ज़्यादा वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, डंडी मारेगा, ऑरेंज भी गिन के ही देगा, चलो बीच में कोई ख़राब डाल देगा। तो उनके रास्ते के ऑब्स्टिकल कम होते हैं, रुकावटें कम होती हैं, फ़ौरन से आ जाते हैं। तभी तो आप देखिए कि सहाबा कराम में से जो लोग शुरू में आ गया है उनका दर्जा बहुत हुआ। क्या सीखा? कुरान पे ईमान लाना है, कुफर नहीं करना, अल्लाह के साथ शरीक करने का हुक्म नहीं देना, और इल्म रखना है। आगे जी रुकू नंबर 11:37-45, अल्लाह की राह में खर्च करना। अब ये पहला ही जुमला ज़रा गौर से सुनिएगा, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम, और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों से करीब कर दें, हाँ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें। समझ आइए, जितना मर्जी माल कमा लो, 10 बेटे हो जाएं तुम्हारे, हमारे करीब तो नहीं आओगे तुम। यानी अल्लाह के कुर्ब की, अल्लाह की नज़रों में बड़ा बनने की कोई दलील नहीं। हाँ एक शर्त है, इसी माल और इस औलाद को नेकियों में खपा दो, बाकियात तो सालेहात बना दो, तो ये तुम्हारे अल्लाह के पास दर्जे बढ़ाने का ज़रिया बनेंगे। हाँ जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, इनके लिए अमाल का दोहरा अजर है, और वो निडर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों के मुकाबले की तगोदो में लगे रहते हैं, यही हैं वो जो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। और इन सब को अल्लाह उस दिन जमा करके फरिश्तों से दरियाफ़ फरमाएगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे तेरी ज़ात पाक है, हमारा वली तो तू है ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे, और इनमें से अक्सर कोई इन्हीं पर ईमान था। बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी भी किस्म के नुकसान और नफ़े का मालिक ना होगा, और हम जालिमों से कह देंगे कि इस आग का अजाब चखो जिसे तुम झुटलाते रहे। आप ज़रा सोचिए, आग के सामने खड़ा करके ये जुमले बोले जाएं, दिल की कैफियत क्या होगी? और जब इनके सामने हमारी साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये कैसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के माबूदों से रोक देना चाहता है, इसके सिवा कोई बात नहीं। और कहते हैं ये तो घड़ा हुआ झूठ है, और हक इनके पास आ चुका, फिर भी काफिर लोग यही कहते रहे कि ये तो खुला जादू है। और इन मक्का वालों को ना तुमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया, क्या पता चला कि अनपढ़ थे। और कम पढ़ा लिखा बंदा जो दुनिया नहीं जानता ना, अमूमन वो दीन भी नहीं समझता। आप जितना मर्जी साठ फोड़ लें अपनी मेट्स और मासियों या कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कुछ गलत चीज़ों में मुलविस हों, नहीं बदलता। और देखी जाएगी, कुछ नहीं होता जी, क्योंकि दुनिया की तालीम बंदे को सॉफ्ट बनाती है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन आती है। मसला पता क्या है कि हमारा जो तरीका तालीम है ना, वो दीन से दूर करता है। आपके चॉइस होता कि 10 पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाएं और इसके मुकाबले में 100 जाहिल और जड्डों को पढ़ाएं, तो आप पढ़ाएं जिनको मर्जी, लेकिन नतायज ज़्यादा अच्छे आएंगे पढ़े लिखे लोगों से, इल्ला माशाल्लाह। और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुटलाया था, और इन्हें हमने जो दे रखा था ये तो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। नोट करें, अशरे अशीर का रस बोलते हैं ना, यानी आज बड़ी बड़ी ताकतें हैं, क्या है, कागज़ के नोट हैं, डिजिटल करेंसी है, चेकबुक्स हैं बस। अल्लाह कहते हैं जिनको पहले दिया था इनसे 10 गुना ज़्यादा दिया हुआ था इनको मैंने, सोने के बर्तनों में खाते थे, चांदी के प्याले तो आप लोगों ने भी अपनी सासों के देखे होंगे, थे ना, पता ही नहीं था बेचारों को कि सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए। फिर आपने कहा अम्मा मुझे प्याला दे दो, मैं सेट बनवा लूँ। तो क्या पता चला कि पहले दौर में दौलत रियल थी, असली थी, सोने चांदी के सिक्के थे, अब तो कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया, फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। तो क्या मैं सीखने को मिली बात कि ईमान लाकर नेक अमल करने हैं, अल्लाह रज़ाक है इस बात का यकीन करना है, उसकी राह में खर्च करना है, शैतान की इबादत नहीं करनी, और हक को बातिल साबित करने की कोशिश नहीं करनी, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनकी कदर करनी है। रुकू नंबर 12:46-54, अल्लाह ताला ही अजर देते हैं, कुल इन्नमा आईज़ुकुम बिवाहिदा, इसका अंदाज़ बड़ा यूनिक है। कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ़ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते ज़िद छोड़ कर दो दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो तो सही, तुम्हारे इस रफ़ीक को कोई जुनून नहीं। नबी सल्लम की तरफ इशारा है, वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त अज़ाब के आने से पहले डराने वाला है। अंदाज़ कितना प्यारा लगता है जब आप अपने बच्चे को बहुत समझा लेते हैं, बहुत समझा लेते हैं। बच्चा या बच्ची कोई भी अमूमन अमूनी की बातें करते हैं ना, नहीं समझ रहे बेटा। वो कहता है मैंने फ़लाँ लड़की से शादी करनी है, या लड़की कहती है मैंने इधर नहीं रहना। आप समझाते हैं एक बार दो बार थे, आप थक जाते हैं। वो कहते हैं ना दिमाग की ठीकरियाँ भी आपकी जो है वो हिल गई जगह से। फिर एक दिन आप गुस्से में भी आते हैं, दर्द में, तकलीफ में। आप कहते हैं बात सुनो, मैं बस तुम्हें आज एक बात समझाती हूँ। और वो कह के अल्लाह के वास्ते ज़िद छोड़ दो, क्योंकि ज़िद्दी बंदा अपना ही नुकसान कर रहा होता है और फिर भी करता है। यहाँ ये अंदाज़ है कि तुम इस शख्स को जादूगर या मजनून कहते हो, ये मजनून नहीं है, ये तो तुम्हें कान अहले अज़ाब से डरा रहे हैं। असल में वो अल्लाह के नबी की भाग दौड़ देखते थे, बग़ैर पैसे के, बग़ैर किसी लालच के, सुबह शाम नबी सल्लम उनको समझाते बुझाते। ये कहते थे आखिर कोई तो इनका फ़ायदा होगा ना, कोई अंदर खाते ज़रूर होगा, मैं नहीं दिखता। अच्छा ये मजनू, फिर ये दीवाने हैं, इनको पता ही नहीं है कमाएं खाएं पिए मौज करें, जैसे लोग रह रहे हैं ऐसे ये भी रहें। तो अल्लाह कह रहे हैं नहीं, इनको आखिरत दिख रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे जो दिखता है ना आगे का, तुम्हें पता चले तो तुम बिस्तरों पर लज्जत लेना छोड़ दो, मुर्दों को दफनाना छोड़ दो और आ जाओ मज़े में। उधर मैयत गाड़ी रुख्सत होती है और हमारे खाने खुल जाते हैं, फिर हम पूछ रहे होते हैं क्या छोड़ के गए और किसका रिश्ता किससे करेंगे, दिल सख्त हो गया। इसलिए फरमाया कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगूँ वो तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे पैसे तुम्हें मुबारक, तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक, जैसे हज़रत सुलेमान ने कहा था वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है, वो हर चीज़ से बाखबर और मुत्तले है। कह दीजिए कि मेरा रब हक़ और सच्ची वही नाजिल फरमाता है, वो हर गैब का जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका है, बातिल ना पहली बार उभरा ना फिर दोबारा उभरेगा। कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊँ तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं राह रास्त पर हूँ तो बस ये बस सबब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझे करता है, वो बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही करीब है। इससे पता चलता है कि कुरान दिलों को थाम लेता है। इधर एक और हदीस आ गई, सही बुखारी 2992 अबू मूसा अलअशरी से है। कहते हैं कि हम एक सफ़र में अल्लाह के नबी के साथ थे, हम किसी वादी में उतरते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहते, हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों अपनी जानों पे रहम करो, क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब अल्लाह को तो नहीं पुकार रहे, वो तो तुम्हारे साथ है, बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है, बरकतों वाला है और इसका नाम और इसकी अजमत बहुत बड़ी है। क्या पता चला, चीख चीख के नहीं बोलना चाहिए, अपने ऊपर रहम करना चाहिए। और अगर आप वो वक्त मुलाहिजा करें जबकि ये कुफार घबराए फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई सूरत ना होगी और करीब की जगह से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस वक्त कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लाए, लेकिन इस कदर दूर जगह से मतलूबा चीज़ कैसे हाथ आ सकती है। वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, इससे पहले तो इन्होंने इससे कुफर किया था और दूर दराज से बिन देखे ही फेंकते रहे। इनकी चाहत और इनके दरमियान पर्दा हाइल कर दिया गया, जैसे कि इससे पहले भी इन जैसों के साथ किया गया, वो भी इन्हीं की तरह शक व तरद्दुद में पड़े हुए थे। दुआ कीजिए अल्लाह हमारा शक दूर कर दे। क्या सीखा, हिदायत पे होना है, इनकार नहीं करना, आखिरत पे यकीन रखना है और धोखे वाले शक में नहीं पड़ना। कितने खूबसूरत पैगाम पे सूरत पूरी हुई, दिलों के शक निकाल के इस किताब को सुनो। आज उम्मत मुस्लिमा को भी बड़े ही शकूक व शुबहात हैं इस किताब पे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे। देखिए आप उसी चीज़ पे वक्त और मेहनत लगाते हैं जिसकी आपकी नज़रों में वैल्यू है। हमारा एक बच्चा स्कूल कॉलेज, कॉलेज से यूनी और यूनी से आगे फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा जाकर कितना कुछ सीख के आता है। यकीन है ना कि उस तालीम की कोई वैल्यू है, डिग्री मिलेगी, रिश्ता अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। इस दीन की तालीम को हम क्या समझते हैं, फालतू की चीज़ समझते हैं। अल्लाह हमारी तरजीहात बदल दें।